दो, कामायनी की रचना के केंद्र में मानवीय संस्कृति का विकास, उसके मान मूल्यों की प्रक्रिया और उसके वर्तमान विभ्रमों का विश्लेषण है और मानवीय संस्कृति के वैशिष्ट का संदर्भ उसकी पिछली देव संस्कृति की तुलना में उभरता है। देवता स्वर्ग और परलोक प्रधान मध्यकालीन भारतीय विचारधारा से हटकर मनुष्य की संस्कृति की यह आत्मविश्वास परक व्याख्या समकालीन राष्ट्रीय संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण संपूर्ण मानवीय संदर्भ में है। और यूं रचना की समस्या बुनियादी होते हुए तत्कालीन भी है। मानव जीवन और संस्कृत के जटिल और संश्लिष्ट रूप को प्रसाद ने कामायनी में उसी जटिलता और संश्लिष्टता में अंकित किया है और पुनर्रचना की इस प्रक्रिया में उन्होंने हमारी समझ और अनुभव क्षमता को समृद्धतर किया है। दर्शन या विज्ञान की तुलना में साहित्य की यह अपनी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें वह जीवन के पूरे अनुभव संश्लेष को बिना विश्लेषण के खंड खंड किए हुए समझने और ग्रहण करने में सहायक होता है। इस अनुभव संश्लेष को कामायनी में महाकाव्यत्व या अंगिरस या आनंदवाद की इकहरी विवेचन पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि हम रचना के विशिष्ट विधान को उसके समूचे रूप में समझने का यत्न करें। साहित्य जीवन का जैसे अक्षुण्ण भाव से अंकन करना है, उसका सम्मान करते हुए समीक्षक का भी दायित्व तो है कि वह उस जीवनानुभव को क्षत विक्षत न होने देकर उसका अधिक से अधिक गहरा और दक्ष साक्षात्कार संभव बनाए। कामायनी की यह रचना दृष्टि यों तो समूची कृति में ही विकसित होती है पर अधिक महत्वपूर्ण संकेत श्रद्धा काम लज्जा और इड़ा सर्ग में है मिलते हैं। इस दृष्टि से अंतिम तीन सर्ग दर्शन रहस्य और आनंद काव्यानुभव की उतनी प्रतीत नहीं कराते जितना दार्शनिक पद्धति से प्रतिपादन करते हैं और अधिकतर इन्हीं सर्गों का दायित्व तो है कि कामायनी में समरसता की जीवंत और गतिशील प्रक्रिया सामान्य समीक्षा की शब्दावली में आनंदवाद के एक स्थिर पुस्तकीय रूप में अभिहित की जाती है। मानव जीवन को कर्म का भोग भोग का कर्म की चक्रीय प्रक्रिया में पहचानने वाले कवि के लिए यह अभीष्ट नहीं था कि वह किसी वाद की प्रतिष्ठा के लिए सचेष्ट हो। भारतीय पुनर्जागरण के अधिकतर मनीषियों ने इस बात की चिंता की कि उनका जीवंत रचना दृष्टि किसी वाद के ढांचे में न जकड़ दी जाए। रामकृष्ण और विवेकानंद जैसे साधक जब अपनी चिंतन प्रक्रिया को उन्मुक्त रख सके तो प्रसाद और निराला जैसे रचनाकारों को तो इस बात की अधिक सुविधा थी कि वे अपने को किसी वाद की गिरफ्त में न आने दें। और यहाँ पाठक विशेषतः समीक्षक का दायित्व तो फिर उभर कर आता है कि ब्राह्मण बौद्ध शैव और कई अन्य देशी विदेशी दार्शनिक विचारधाराओं से बौद्धिक तथा रचनात्मक उत्तेजन पाने पर भी प्रसाद के कृतित्व को वह उसके वैशिष्ट्य में ही देखने समझने का यत्न करे बजाय इसके कि उसे किसी बनी बनाई दार्शनिक पद्धति से बांध दिया जाए। तो मूल समस्या यही है कि न तो रचना दृष्टि का ऐसा विश्लेषण हो कि वह विरूप हो जाए और न ही उसे कृति के विशिष्ट विधान से विलगा कर एक तत्व दृष्टि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाए। समकालीन समीक्षा में गजानन माधव मुक्तिबोध के प्रयास में किसी सीमा तक इस महत्वपूर्ण समस्या की चिंता हुई है पर कामायनी को शैवागम के जाल से छुड़ाकर भी उन्होंने पूंजीवाद और मार्क्सवाद की शब्दावली में परिभाषित करके अपनी ही दी हुई रचनात्मक मुक्ति को स्वयं मिटा दिया। पर इसके बावजूद उनकी समीक्षा कृत में कला को जीवन की पुनर्रचना के रूप में अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया गया है। सांस्कृतिक संघर्ष की मूल वस्तु का अंकन कामायनी में प्रसाद तीन स्तरों पर करते हैं। पहले है देव और असुरों के सांस्कृतिक मूल्यों की टकराहट, फिर आता है देव सृष्टि की तुलना में नव विकसित मानवीय सृष्टि का वैशिष्ट्य और फिर इस रचनानुक्रम में अंततः मध्ययुगीन जीवन मूल्यों के विरोध में उठ खड़ी हुई पुनर्जागरण युगीन नई भारतीय संस्कृति की प्रस्तावना उभरती है। पहले दौर का संघर्ष कवि ने अंकित किया है, मुख्यतः ईड़ा सर्ग में। जीवन का लेकर नव विचार जब चला द्वंद था, और उससे अगले छंद था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अंगता में अपने को समझ रहा प्रवीण। मैं एक स्तर पर सामान्यतः किसी युग की दो विरोधी विचारधाराओं और सभ्यताओं के अहंकार का द्वंद हो सकता है, जहां एक में भौतिक जगत की जड़ता पर आग्रह है तो दूसरी ओर चैतन्य का प्रबल अहंग भाव है। प्रकारांतर से यह संघर्ष देवासुर संग्राम की रत्नों के बंटवारे की स्थूल पौराणिक कथा को एक भिन्न और सूक्ष्म स्तर पर व्याख्यायित करता है, और एक तीसरे समकालीन स्तर पर यहाँ रूस और अमेरिका के बहुचर्चित शीत युद्ध की प्रतिद्वंदी विचारधाराओं का बड़ा सटीक चित्रण पूर्वाशित हुआ है। फिर ये तीनों मिलते जुलते अर्थ स्तर परस्पर की अंतर क्रिया में और एक विराट सांस्कृतिक मूल्य बोध का रूप धारण कर लेते हैं। यह समूची अर्थ प्रक्रिया कामायनी के महिमाशाली बंधान के सर्वथा अनुकूल है। कामायनी में जैसा कहा गया है, मानवीय संस्कृत का वैशिष्ट्य देव संस्कृत के संदर्भ में उभरता है, पर दोनों संस्कृतियों के जीवन मूल्यों की तुलना आमने सामने रखकर नहीं की गई। अपने ढंग से इस समस्या को बाद में दिनकर ने उर्वशी में उठाया है, जहां उर्वशी के माध्यम से यह तुलना होती है और मानवीय जीवन में स्पृहणीयता प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादित की जाती है। कामायनी में स्थूल कथा के स्तर पर तो मानव सृष्टि पूरे तौर पर बनी भी नहीं है, पर वह गौण बात है। असल में तो प्रसाद इस तुलना को प्रकट रूप में लाए बिना केवल संकेतों में व्यंजित कर देना चाहते हैं। ईड़ा सर्ग में काम का मन को दिया गया लंबा श्राप एक स्तर पर मानवीय विभीषिका को अंकित करता है, पर दूसरे और अधिक सूक्ष्म स्तर पर साथ ही साथ यह भी व्यंजित कर देता है कि मनुष्य ने अपनी इस अभिशप्त नियत को बलपूर्वक और संकल्प के साथ अपने जीवन के वैशिष्ट के रूप में बदला है। काम के अभिशाप से कुछ पंक्तियां देखिए। हाँ, अब तुम बनने को स्वतंत्र, सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, रोकर बीते सब वर्तमान क्षण सुंदर सपना हो अतीत, कर्तृत्व सकल बनकर आवे नश्वर छाया सी ललित कला, नित्यता विभाजित हो पल पल में काल निरंतर चले ढला, हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध। और अभिशाप का अंतिम छंद, तुम जरा मरण में चिर अशांत, जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत, अमृत वही अब भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत। ध्यान देने की बात है कि श्राप चलता है जैसे देश काल को फेंटते हुए भविष्य पुराण की प्रकथन शैली में। मनु श्राप को सुनकर सोचते हैं, लिख दिया आज उसने भविष्य यातना चलेगी अंतहीन, अब तो अवशिष्ट उपाय भी न। काम के इस श्राप का सबसे अधिक बल इस बात पर है कि देव सृष्टि का अनंत जीवन अब से समाप्त हो जाएगा और नई सृष्टि को जरा मरण का भय सताता रहेगा, पर मानवता इस श्राप को अपने लिए एक शक्ति के रूप में बदल लेती है। मनुष्य मृत्यु के आतंक से बचने के लिए जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, मृत्यु की चुनौती स्वीकार करके उसका अतिक्रमण करने के लिए मनुष्य अपने सीमित व्यक्तित्व को प्रेम और सृजनात्मक वृत्तियां विकसित करके असीम विस्तार देता है। अमृत में बंधे हुए देवगण प्रेम और सृजनात्मकता के रहस्य से पूरी तरह अपरिचित थे। इसकी बड़ी सूक्ष्म और कलात्मक व्यंजना कवि पहले ही काम और लज्जा सर्ग में देता है। देव सृष्टि में काम का जो स्थूल भोग विलास वाला रूप था, वह मानवीय सृष्टि में अनंग होकर प्रेम की सूक्ष्म प्रक्रिया में बदल गया है। काम मन को बताता है, वे अमर रहे न विनोद रहा, चेतनता रही अनंग हुआ, आरंभिक वात्या उद्गम में अब प्रगति बन रहा संस्कृत का, मानव की शीतल छाया में ऋण शोध करूंगा निज कृत का। दूसरी ओर लज्जा श्रद्धा से कहती है, मैं देव सृष्टि की रति रानी निज पंचवाण से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दीना अपने अतृप्ति से संचित हो, अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपने अतीत असफलता सी। काम और रति का यह नई सृष्टि में रूपांतरण मानो मानवीय संस्कृति के नए मान मूल्यों के विकास का पहला चरण है। मूल बात यह है कि दोनों बदलने की प्रक्रिया में स्थूल से सूक्ष्म हो जाते हैं। काम अनंग हो जाता है, रति का लज्जा में रूपांतरण तो और भी सूक्ष्म और कलात्मक है। अवशिष्ट रह गई अनुभव में, मानवीय व्यक्तित्व में देव सृष्टि के स्थूल ऐन्द्रिक संवेदनों के बजाय सूक्ष्म अनुभव प्रक्रिया कैसे केंद्रीय हो जाती है, इसका बड़े हल्के संकेतों से प्रभावी अंकन प्रसाद ने किया है। मन की रचनात्मक क्षमता को श्रद्धा और ईड़ा दोनों अपने अपने ढंग से जागृत और सक्रिय करना चाहती हैं, करती हैं। दोनों ही इसके लिए प्रकृति के समायोजन पर बल देती हैं। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा कहती है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ चेत का चेतन, यही जड़ का चेतन आनंद। आगे ईड़ा स्वर्ग में ईड़ा कहती है, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन, तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्म लीन। पर दोनों की प्रक्रिया में अंतर भी है। श्रद्धा की रचना का सर्जन में रचना या सर्जन में जीव सृष्टि के धरातल से लेकर मानसिक सर्जन तक सम्मिलित है। ईड़ा के सर्जन में विज्ञान की प्रमुखता है। मन के प्रति अपने समग्र व्यक्तित्व को समर्पित करती हुई श्रद्धा की भावना है। वनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। ईड़ा में आत्मदान का यह रूप नहीं है, इसीलिए प्रकृति पर मनुष्य की विजय में वह यंत्र को केंद्र में रखती है, जबकि श्रद्धा के लिए केंद्रीय तत्व मनुष्य का व्यक्तित्व है। श्रद्धा की यह दृष्टि मशीन के प्रति महात्मा गांधी के दृष्टि से बहुत मिलती जुलती है। गांधी मशीन के विरुद्ध नहीं थे, वे यही चाहते थे कि मनुष्य का व्यक्तित्व मशीन से आक्रांत न हो जाए। पर श्रद्धा और ईड़ा के इस मौलिक मतभेद के बावजूद श्रद्धा को नायिका और ईड़ा को खलनायिका मानकर चलने की जो प्रवृत्ति कभी कभी समीक्षकों में दिखाई देती है, वह सर्वथा भ्रांत और सरल वर्गीकरण की भावना से प्रेरित है। श्रद्धा और ईड़ा दोनों के व्यक्तित्व और वे वर्णनात्मक महाकाव्यों के वास्तविक चरित्र न होकर सूक्ष्म सांकेतिक व्यक्तित्व जैसे ही हैं, बहुत दूर तक एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। मन के प्रति दोनों के उद्बोधन लगभग एक जैसी भाषा में है। जड़ तत्व को चेतन करना दोनों की मूल समस्या है। श्रद्धा कहती है, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद, और ईड़ा भी यही चुनौती सामने रखती है, तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय। मन की आदिम अहंगवादी प्रवृत्तियों को दोनों ही शांत और अनुशासित करना चाहती हैं, और इसी में दोनों मन को रुष्ट कर देती हैं। श्रद्धा को छोड़कर जाते समय मन कहते हैं, तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र, और सारस्वत प्रदेश के संघर्ष में भी ईड़ा के परामर्श को ठुकराकर मन अपनी यही नींद घोषित करते हैं, मैं शासक मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा हो अधिकार असीम। यह वस्तुतः देव सृष्टि का और एक दूसरे पर संप्रित अर्थ स्तर पर आदिम मनुष्य के मन का उच्छृंखल अबाध सुख भोग का संस्कार मन के मन में है। श्रद्धा और ईड़ा दोनों के अलग अलग पर सम्मिलित उद्योग से इसे नई मानवीय रचना की दृष्टि से नियोजित और अनुशासित किया जाता है। यही जैसे कामायनी की मूल वस्तु है, जो इस मानवीय रचना के व्यवरेवार विश्लेषण में अधिक प्रशस्त हुई है। इस व्यवरेवार समग्र रूप की चर्चा हम कुछ आगे करेंगे। यहाँ इतना ही स्पष्ट करना अभिष्ट है कि श्रद्धा और ईड़ा की दृष्टियों में अंतर समझने के लिए उनकी समानांतर प्रक्रिया भी समझना जरूरी है। इड़ा खलनायिका या कूटयंत्र चालिका नहीं, वह संघर्ष सर्ग में मन को बहुत देर तक समझाने का यत्न करती है, उसी तरह जैसे श्रद्धा ईर्ष्या सर्ग के अंत में करती है और यही कहती है, सावधान मैं शुभाकांक्षी हूँ और कहूँ क्या। इड़ा के शुभाकांक्षी रूप को समझे बिना हम कामायनी में उठाई गई मानव मूल्यों की समस्या को ग्रहण नहीं कर सकते। यह सही है कि श्रद्धा में आत्मदान की भावना है और माँ के रूप में उसने सर्जन की पीड़ा को सहा और समझा है। दुर्भर थी गर्भ मधुर पीड़ा झेलती जिसे जननी सलील, पर यह प्रसाद की विशेषता है कि उन्होंने श्रद्धा और ईड़ा को जितना द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा है उतना ही एक दूसरे के पूरक रूप में भी। संघर्ष और समाहार दोनों स्तर एक दूसरे में बुने हुए हैं। पश्चिम और पूर्व का अनिवार्य विरोध यहाँ जैसे विलीन हो जाता है। इस माने में मनु श्रद्धा और ईड़ा प्रेम का परंपरागत त्रिकोण नहीं, वरन नई मानवीय रचना की जटिल प्रक्रिया के माध्यम है। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य यह है कि श्रद्धा और ईड़ा दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या न करके एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान भाव रखती हैं। तो देव सृष्टि की सृष्टि से बड़ी और अधिक स्पृहणीय मानवीय सृष्टि में शरीर नहीं रचना की अमरता है, जहाँ मृत्यु जीवन को अधूरा नहीं वरन संपूर्ण बनाती है। इस व्यापक मानवीय संस्कृत के रूपांकन में प्रसाद ने भारतीय संस्कृत के संदर्भों को बड़ी कुशलता से उठाया है। कवि का पहला यत्न है देव सृष्टि की अप्रकट तुलना में मानवीय संस्कृत की नई क्षमता को आत्मविश्वास के साथ ऊपर उभारना। मानवीय सृष्टि यदि नश्वर है तो यह नश्वरता ही उसमें प्रेम और रचना की शक्ति विकसित करती है, जो देव सृष्टि के अनंत जीवन में अकल्प्य थी और जिसने मानवीय सृष्टि को एक अपूर्व सूक्ष्मता और गरिमा प्रदान की है। मानवीय संस्कृत के इस रूप में तीसरे चरण के अंतर्गत फिर कवि भारतीय संस्कृत की समस्या को उठाता है। भारतीय संस्कृत की चिंतना के प्रसंग में प्रसाद के मानस का पोषण अधिकतर पुनर्जागरण की चेतना के आधार पर हुआ है। इह लोक का महात्म्य जीवन प्रियता की भावना, इच्छा और कामना का सत्कार और कर्म का महत्व जैसे प्रसाद की चिंतन प्रक्रिया को गतिशील करने वाले तत्व परंपरित मध्यकालीन भारतीय जीवन दृष्टि के विरोधी हैं तथा काफी हद तक 19वीं शती के पुनर्जागरण से उत्प्रेरित हैं। कामायनी की एक आरंभिक सर्ग श्रद्धा में ही उपर्युक्त तत्वों के आधार पर कवि ने जैसे अपनी रचना दृष्टि की प्रस्तावना रखी है। सूर, कबीर, तुलसी आदि मध्यकालीन कवियों की जीवन दृष्टि को यहाँ अस्वीकार कर दिया गया है। भक्त कवियों ने सारे सांसारिक दुखों की जड़ में इच्छा को मानकर उससे उबरने की प्रार्थना की, पर कामायनी की श्रद्धा मन को समझाती है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। यहाँ इच्छा का जितना सत्कार है परलोकवादी दृष्टि पर उतना ही तीखा व्यंग्य है और इहलोक की प्रतिष्ठा है। दुख और सुख को एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया मानकर प्रसाद विकास को उसी के माध्यम से संपन्न हुआ मानते हैं। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। कवि का यह साहसी चिंतन है जो पश्चिम की द्वंद्व प्रक्रिया डायलेक्टिक को उत्साह से स्वीकार करके उसके माध्यम से समरसता की भारतीय परिकल्पना तक पहुंचता है, जहां विरोधी तत्वों का समाहार नहीं होता वरन विरोध की दृष्टि ही समाप्त हो जाती है। यह एक तरह से डायलेक्टिक और अद्वैत के योग की विराट धारणा है, जिसे प्रसाद जैसे मनीषी कवि ही विकसित कर सकता है। इस सारी रचना प्रक्रिया में कवि की जीवन प्रियता का मूल भाव बराबर व्यंजित होता रहता है। कामायनी की श्रद्धा केवल हृदय पक्ष की प्रतीक नहीं है, वह जीवन में आस्था और श्रद्धा भाव को भी व्यंजित करती है। श्रद्धा स्वर्ग में श्रद्धा और मन के संवाद गीता में कृष्ण और अर्जुन का रूप स्मरण कराते हैं। देख पुनश्च संस्करण 1997 से मिलाइए। मनुष्यों का टिप्पणी, मनुष्यों का स्वाधीन श्रम ऋग्वेद के कवियों की जीवन दृष्टि का आधार है। कर्म अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं जब तक जिए कर्म करते रहें, और 100 वर्ष से कम कोई जीना नहीं चाहता। अन्य धर्म ग्रंथों के रचयिता परलोक में सुख की कामना करते हैं। ऋग्वेद के कवि जबरदस्त इहलोकवादी हैं। भवसागर से पार जाने की उतावली उन्हें जरा भी नहीं है। यह संसार उनके लिए दुख का कारण नहीं है। वे 100 वर्ष तक इसी संसार में सूर्य को देखते हुए जीना चाहते हैं। मुक्त श्रम के आधार पर जो मानव मूल्य बनते हैं वे ऐसे ही होते हैं। संसार और जीवन में आस्था रखने वाले इन मूल्यों का महत्व भारत के लोग तब पहचानेंगे जब एक बार फिर वे अपने श्रम के फल के स्वामी होंगे और अपनी समाज व्यवस्था का पुनर्गठन करेंगे। रामविलास शर्मा, भारतीय नवजागरण और यूरोप, 1996 पृष्ठ 112। जीवन प्रियता का यह भाव पुनर्जागरण युग में गीता और उसकी कर्मवादी दृष्टि से अनुप्रेरित कहा जाता है, जो सामान्यतः ठीक ही है। पुनर्जागरण के आरंभ से लेकर तिलक और गांधी तक, जिनके बाद पुनर्जागरण की प्रक्रिया अवरुद्ध सी हो जाती है, सभी मनीषी अपने द्वारा की गई जीवन की पुनर्रचना में गीता को केंद्र में रखते हैं। प्रसाद की श्रद्धा भी मन के समक्ष कर्म का दर्शन प्रस्तुत करती है, पर यहाँ कवि ने अपनी दृष्टि में एक गुणात्मक और महत्वपूर्ण तत्व विकसित किया है। गीता का कर्म निष्काम कर्म है, जो कर्म न होकर साधना अधिक हो जाता है। कामायनी में कर्म और भोग को एक अनिवार्य चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मन को जीवन में फिर से रुचि लेने को प्रेरित करती हुई श्रद्धा कहती है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म भोग को प्रेरित करे और भोग कर्म को, यही श्रद्धा के अनुसार जीवन की प्रक्रिया है। यहाँ जैसा कहा गया है, डायलेक्टिक का द्वंद्व भी है और अद्वैत का एकीकरण समरसता भी है। स्पष्ट ही निष्काम कर्म की तुलना में कर्म और भोग की यह प्रक्रिया मानवीय मनोविज्ञान के अधिक निकट और उतनी ही व्यावहारिक भी है। गीता की दृष्टि में कुछ जोड़ने का यह उपक्रम जितना साहसिक है उतना ही रचनात्मक भी। भारतीय संस्कृत की शुद्ध वैचारिक स्तर पर विवेचना करते हुए भी प्रसाद ने इस मंतव्य को प्रकट किया है। रहस्यवाद पर लिखे गए अपने विस्तृत निबंध में प्रसाद ने भारतीय चिंतन क्रम में आरंभ से चली आने वाली विवेक और आनंद की धाराओं का निर्देश किया है। वे कहते हैं, ये विवेक और आनंद की विशुद्ध धाराएं अपनी परिणति में अनात्म और दुखमय कर्मवादी बौद्धहीनयान संप्रदाय तथा दूसरी ओर आत्मवादी आनंदमय रहस्य संप्रदाय के रूप में प्रकट हुई। इसके अनंतर मिश्र विचारधाराओं के सृष्टि होने लगी। प्रसाद ने इन दोनों विचारधाराओं का संबंध वैदिक वरुण और इंद्र से माना है। एकेश्वरवाद के वरुण और आत्मवाद के इंद्र प्रतिनिधि माने गए। वरुण न्यायपति राजा और विवेक पक्ष के आदर्श थे। महावीर इंद्र आत्मवाद और आनंद के प्रचारक थे। वरुण को देवताओं के अधिपति पद से हटाना पड़ा। इंद्र के आत्मवाद की प्रेरणा ने आर्यों में आनंद की विचारधारा उत्पन्न की। कामायनी में विवेक की धारा के प्रतिनिधि रूप में किसी सीमा तक इया को माना जा सकता है, पर आनंद का प्रतिनिधित्व अकेले श्रद्धा नहीं कर सकती। समूची कामायनी की रचना प्रक्रिया में से ही आनंद का व्यापक और संश्रेष्ठ भाव विकसित होता है। ईड़ा भी इसमें शामिल है। इसी को मैंने प्रसाद के द्वारा संपन्न डायलेक्टिक और अद्वैत का योग कहा है, जिसे आनंद के रूप में भारतीय मानस की उच्चतम भाव भूम सदैव से माना जाता रहा है। द्रष्टव्य तैत्तरीय उपनिषद में वरुण के पुत्र भृगु की तपस्या का आख्यान, जहां अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद के उत्तरोत्तर ऊंचे होते हुए अनुभव स्तरों का वर्णन है, पर जिसे विकसित और साक्षात्कृत करने की प्रक्रिया हर युग और हर मनीषी के लिए उसकी अपनी और मौलिक होगी। कामायनी में आनंद को अपने युग के संदर्भ में नए सिरे से परिभाषित और पुनराविष्कृत करने का यत्न किया गया है। इस युग के खतरे प्रसाद की दृष्टि में हैं। अति भौतिकता और अति वैज्ञानिकता के ये प्रवृत्तियां किसी देश विदेश की न होकर संपूर्ण नई मानवीय संस्कृति की हैं, जिसका केंद्र वर्तमान युग में यूरोप रहा है। प्रसाद ने इन अतिवादी प्रवृत्तियों से जूझने का रचनात्मक उपक्रम किया है, जो कामायनी की विशिष्ट प्रक्रिया और उपलब्धि है। इसे आनंदवाद कह देना भाषा के स्तर पर और इसीलिए संवेदना और चिंतन के स्तर पर भी मानो इस सारी प्रक्रिया को अपने मन में अवरुद्ध कर लेना है। अतः समरसता और आनंद को प्रसाद के रचना अनुभव के केंद्र में तो हम माने, पर उन्हें वाद के रूप में सीमित न कर दें। इस सारी विचार और अनुभव प्रक्रिया को विकसित करने में कवि के सामने दोहरी समस्या है। एक ओर तो पश्चिम की जीवन पद्धति है जो भौतिकता से ग्रस्त है, दूसरी ओर परवर्ती भारतीय चिंतन परंपरा है, जिसने विवेक के अतिरेक से सारे सांसारिक जीवन को दुखमय और इसीलिए वैराग्योन्मुख बना दिया है। इन दो परस्पर विरोधी स्थितियों के बीच में प्रसाद ने जीवन की एक समृद्ध और समग्र परिकल्पना प्रस्तुत की है, जो उतनी ही व्यापक और विराट है जितना भारतीय जीवन में शिव का रूप, जो कई कारणों से प्रसाद के लिए विशेष प्रेरक तत्व था। कामायनी के अंतिम सर्गों में नटराज के जिस रूप का चित्रण है, वह सांकेतिक होते हुए भी एक स्तर पर अभिथेयार्थक है। मूल बात कृति में परिव्याप्त रचना दृष्टि की है और इस स्तर पर कर्म का भोग, भोग का कर्म की दृष्टि प्रस्तावित करना एक ऐसी ही रचनाकार के लिए अपेक्षा सहज है, जिसने शिव के योगी भोगी रूप की प्रक्रिया समझी हो। पूर्व और पश्चिम के वर्तमान अतिवादों में जीवन का ऐसा समूचा साबित रूप विकसित करके प्रसाद ने न केवल उनके दृष्टि में निहित विभ्रमों का परिहार किया है, वरन दोनों को एक समग्र रूप में अंकित किया है, जहां एक विश्व का नारा नहीं अनुभव है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में प्रसाद ने सबसे गहरा विरोध वैराग्य भावना का किया है। श्रद्धा और ईड़ा दोनों अपने अपने ढंग से जीवन प्रियता को अभिव्यक्त करती हैं। ईड़ा को तो श्रद्धा दर्शन सर्ग में जीवन की अंधानुरक्त कहती है और इसी का नियमन करने के लिए वह कुमार को ईड़ा के साथ छोड़ देती है। कामायनी में जीवन प्रियता की इस केंद्रीय दृष्टि के प्रसंग में मुक्तिबोध और दीनकर ने अपने अपने ढंग से शंकाएं उठाई हैं। इन दोनों कवि समीक्षकों ने कामायनी के संबंध में काफी सहानुभूति और अच्छी तैयारी के साथ लिखा है और इनकी शंकाएं पहली दृष्टि में संगत भी जान पड़ती हैं। कुशल और संवेदनशील रचनाकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के इस विवेचन में हम अपनी दृष्टि को और अधिक स्पष्ट तथा प्रशस्त कर सकते हैं।